نسمة الصبح الآثير تكلمي واروي حديثا مفعما بتنعمي.
نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. میرے محترم بزرگو، بات چل رہی تھی اللہ تعالیٰ کے عفو و کرم کی. ایک مرتبہ چند صحابہ اکرام اللہ کے نبی کے کمرے کے باہر کھڑے تھے، آپ کا انتظار کر رہے تھے کہ آپ باہر نکلیں تو آپ سے کوئی بات چیت کرنی. آپ تھوڑی دیر کے بعد باہر آئے، لیکن آپ نے صحابہ اکرام کو گفتگو کرتے ہوئے سنا. ایک صحابی نے کہا، کیا ہی عجب بات ہے کہ اللہ نے اپنی اتنی بڑی مخلوق میں سے صرف ایک آدمی کو اپنا خلیل بنا دیا. فاروق ابراہیم ہے، خلیل کے معنی جگری دوست. اتنی بڑی مخلوق میں سے اللہ نے صرف ایک آدمی کو خلیل بنایا اور وہ ابراہیم ہے. ایک صحابی نے کہا کہ کیا عجب ہے کہ اللہ نے موسیٰ کو کریم بنایا. کریم اللہ نے سیدھی بات کی، حالانکہ موسیٰ کوہ طور پر ہے، اللہ آسمان پر جلوہ افروز ہے، اور اللہ نے سیدھی ہم کلامی کی موسیٰ سے. تیسرے صحابی نے کہا، کیا عجب ہے اور کیا ہی نرالی شان ہے عیسیٰ کی کہ جس کو قرآن نے روح اللہ کہا اور جس کے حق میں قرآن نے کہا وَقَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ. قرآن نے کہا کہ اللہ کا قول ہے، عیسیٰ اللہ کا کلمہ ہے اور عیسیٰ اللہ کی روح ہے. ایک صحابی نے کہا، سب سے عجب بات یہ ہے کہ اللہ نے آدم کو صفی اللہ بنایا. صفی اللہ کہا، اللہ کے نبی باہر آئے، آپ نے کہا کہ تم سب کی بات چیت میں نے سنی. ایک نے کہا کہ خلیل بنایا ابراہیم کو، یقیناً ابراہیم خلیل اللہ، اللہ کے نبی نے فرمایا. ایک نے کہا کہ موسیٰ سے بات کی تو یقیناً موسیٰ کی یہی شان ہے کہ موسیٰ کلیم اللہ. پھر تم میں سے ایک نے کہا کہ عیسیٰ روح اللہ ہیں، بات بالکل سچی، عیسیٰ کی وہی شان ہے. اور تم میں سے ایک نے کہا کہ آدم صفی اللہ ہیں، بالکل برابر ہیں، آدم کی یہی شان نرالی ہے، پر میں حبیب اللہ ہوں، میں حبیب اللہ ہوں اور مجھ جیسا نبی تم کو اللہ نے عطا کیا ہے. یاد رکھو، ہمارے نبی نے فرمایا، نہ جنت کا دروازہ اور اس کی زنجیر، نہ تو ابراہیم کھٹکھٹائے گا، نہ موسیٰ کلیم، نہ عیسیٰ روح اللہ، نہ آدم صفی اللہ، صرف جنت کے کواڑ کو کھٹکھٹائے گا حبیب اللہ. کتنا نرالا نبی دیا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا، جب تم مؤذن کی اذان سنو جواب دیا کرو. کون جواب دیتا ہے؟ کوئی نہیں دیتا. عورتوں میں تو بالکل عادت ہی نہیں، عورتیں تو بیٹھی بیٹھی باتیں ہی کرتی رہتی ہیں، یہاں تک کہ جب مؤذن کا کلمہ ان کے کان میں پڑتا ہے، انہیں اتنی فرصت نہیں رہتی کہ ہمارا دوپٹہ اور اونٹنی سر پہ ہے کہ نہیں. یہ سب غفلت ہے، جہالت نہیں، جہالت نہیں، بہت سنتے ہیں باتیں، کوئی جہالت نہیں، غفلت ہے اور اپنے آپ کو غافل بنا رکھا ہے. آپ نے فرمایا، جب مؤذن اذان کہے تو تم جواب دو. کیا جواب دینا ہے؟ مؤذن جو کلمہ پڑھے وہی کلمہ تمہیں بولنا ہے. جب مؤذن کی اذان پوری ہو جائے تو تم درود شریف پڑھو، اس لیے کہ جو بندہ ایک بار درود پڑھتا ہے میرا پروردگار 10 رحمتیں اس پر نازل فرماتا ہے. آپ نے فرمایا، جب تم درود پڑھ چکو تم میرے لیے وسیلہ مانگو. وسیلہ، آپ نے فرمایا کہ وسیلہ بہت بڑا درجہ ہے جو مخلوق میں سے صرف ایک آدمی کو ملے گا، اور میں امید کرتا ہوں کہ وہ میں ہی ہوں، ہمارا نبی ہی ہے. پھر آپ نے فرمایا، جو کوئی بندہ میرے لیے وسیلہ مانگے گا، وسیلے کی دعا کرے گا، اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی. कितना सस्ता सौदा है। और वो वसीला क्या मांगना है? जाबिर इब्न अब्दुल्लाह की रिवायत है कि अजान पूरी हो जाए तो पढ़ो اللهم رب هذه الدعوه التامه والصلاه القائمه آتِ محمدًا الوسيلة والفضيلة وَأَخُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدْتَ۔ یہی وسیلہ ہے، جس نے بھی اس وسیلے کی دعا کی ہمارے نبی کے لیے، ہمارا نبی فرماتا ہے کہ جنت میں دلاؤں گا۔ یا تو وسیلہ تو کیا مانگنا، مسجدوں کے اندر قحط پڑا ہوا ہونا ہے، نمازیوں سے یہ خالی ہو گئی ہیں، مسجد ویران نظر آتی ہے۔ میرے بھائیو، امت کا قدار کب آتا ہے؟ سب سے پہلے ان کی مسجد ویران ہوتی ہے، اور جب مسجد بددعائیں کرتی ہیں۔ ہمارے بزرگان دین جب کسی مسجد کو دیکھتے کہ اس میں مسلی نہیں تو وہ گھٹنے لگتے تھے کہ کہیں اس بستی کے اوپر اللہ کا عذاب نہ آ جائے۔ مولانا مظفر حسین کاندھلوی رحمت اللہ علیہ علماء دیوبند میں سے بڑے محدثین میں سے ہیں۔ آپ کاندھلا سے جلال آباد جا رہے تھے، جب آپ جلال آباد پہنچے تو آپ نے ایک چھوٹی مسجد دیکھی، دروازے ٹوٹے ہوئے، کھڑکیاں ٹوٹی ہوئی، کچرا، اور کوئی نمازی نہیں، کوئی مصلی نہیں، پانی کا بھی انتظام نہیں، گویا صدیوں سے کھنڈر ہیں، ایسی مسجد لگ رہی تھی۔ آپ نے سوچا کہ مجھے نماز اسی مسجد میں ادا کرنی ہے، آپ نے اپنا سامان باہر رکھ دیا، اس کے بعد مسجد کی خوب اچھی طرح صفائی کی۔ صفائی کرنے کے بعد انہوں نے پانی دیکھا تو قریب میں کنواں نظر آیا، تو آپ پانی لینے باہر گئے، پانی کھینچا، نیچے فرش کے اوپر ڈالا اور اس کو اچھی طرح صاف کیا اور وضو کیا۔ اتنے میں ایک آدمی قریب سے گزرا، پوچھا کہ میں ادھر آؤں، یہاں کوئی آتا نہیں مسجد کے اندر؟ تو کہا یہاں تو کوئی نماز نہیں پڑھتا، یہ تو کئی سالوں سے ایسے ہی پڑی ہوئی ہے۔ کہا یہاں کوئی مسلمان کا ہے؟ 10-15 مکان ہیں، اگر وہ نماز پڑھنے کے لیے آئے تو کم سے کم 20-25 لوگ تو ہو جائیں گے۔ لیکن اس نے کہا یہ مسجد کے سامنے ایک مسلمان ہے جو ہمارا چوہدری ہے۔ چودھری وہ دیہاتوں میں، یو پی میں تو آج بھی خان صاحب، چودھری صاحب، صاحب صاحب بہت ہوتے ہیں وہاں۔ تو کہا ہمارے یہ چودھری صاحب اگر نماز پڑھنے کے لیے آئے تو سب اندر آئے۔ تو حضرت نے کہا تو چودھری صاحب کیوں نہیں پڑھتے نماز؟ کہو وہ تو 24 گھنٹے نشے میں ہی رہتے ہیں اور زنا کا بازار گرم رہتا ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ مجھے انہی کو ملنا چاہیے۔ آپ وہاں تشریف لے گئے تو باہر ایک پاٹ رکھا ہوا تھا لکڑی کا، اس پر بیٹھے تھے، تکیہ لگایا تھا، اور وہ میواتی ہوکے نے لمبی پائپ جیسا ہوتا ہے، ایسے وہ ہوکا چلا رہا تھا اور بڑے خرانے لے رہا تھا اور اپنے ناک سے اور منہ سے دھواں نکال رہا تھا۔ آپ پاٹ کے اوپر بیٹھ گئے کہ چودھری صاحب آپ بڑے نیک آدمی ہیں۔ کہا کیا نیک آدمی، آپ دیکھتے نہیں ہیں، نشے میں لگ رہے تھے، برابر سن بھی نہیں رہے تھے، سمجھ بھی نہیں پا رہے تھے۔ آپ نے ان کو بہت سمجھایا، بہت سمجھایا۔ آپ نے ان کو کیا کہا کہ اگر آپ کی وجہ سے یہ محلے والے مسجد کے اندر نماز پڑھتے ہو جائے تو آپ کے لیے تو سستا سودا ہے، تمام کی نمازوں کا ثواب آپ کو ملے گا۔ تو کہنے لگا کہ ملا جی، وہاں ملا جی کہتے ہمارے اقابروں کو بھی، کہا ملا جی مجھ سے وضو نہیں ہوتا، مجھے بہت کٹھن کام لگتا ہے وضو، اور شراب تو مشکل ہے چونکہ۔ حضرت نے کہا ایک کام کرو، بغیر وضو کے نماز پڑھو، شراب تو پی لیا کرو۔ میں نے کہا نا کام ہے، تم شراب پی لو لیکن وضو کے بغیر بھی آپ مسجد میں جاؤ نماز پڑھو، تاکہ آپ کو خالی لوگ دیکھیں گے تو کم سے کم وہ تو آئیں گے، تو آپ کو وضو بھی نہیں کرنا پڑے گا، آپ کو شراب بھی نہیں چھوڑنی۔ کہاں یہ برابر ہے، یہ تو ہو سکے گا۔ تو کہاں کہ میں پی کر کے مسجد میں جاؤں؟ تو کہاں ایسا نہیں کرنے کا، اندر پہ تم کو होश हवास नहीं रहेंगे। आप वैसे पिया करो लेकिन मस्जिद में जाओ तो मत पियो, बगैर वजू के चले जाए। कहा ठीक है, हाथ मिलाया कि चलो ठीक है, ये तो आज से शुरू करूंगा और मैं वादा देता हूं, वचन देता हूं, मैं इसको निभाऊंगा। तो आपको लगा कि नहीं ये निभाए, ऐसा लग रहा है। आप दौड़ते हुए मस्जिद में आए, आपने दो रकात सलातुल हाजत पढ़ी, इसके बाद सजदे में इतना रोए कि जहां सजदा किया था आपके चेहरे के नीचे की जगह तरबतर हो गई आंसुओं से। कहा कि मेरे रब, खड़ा करना था तो मैंने खड़ा कर दिया, दिल तो रहमान तेरे कब्जे में है, आगे का सब काम तेरे कब्जे कुदरत में है, मुजफ्फर हुसैन के कब्जे में जितना था कर दिया, तूने मुझे मुकल्लफ बनाया था समझाने का, वो कर लिया मैंने। पर जहां तक सवाल है वुज़ू का और जहां तक सवाल है शराब का, तो तेरे कब्जे कुदरत में है, आधा काम मैंने कर दिया, आधा तू भी कर दे, ताकि इस बस्ती के अंदर लोग नमाज पढ़ने वाले हो जाए। अल्लाह ने चौधरी के दिल में बांट डाला, उसने कहा पहली बार मस्जिद जा रहा हूं, लाओ ने गुसल कर लो, तब तक तो नहीं गया, फिर कल से वुज़ू के बगैर नमाज पढ़ूंगा जैसे मुल्ला जी ने कहा है, लेकिन आज तो कम से कम गुसल करके जाओ। गुसल किया और उस दिन सुबह से उसने शराब नहीं पी कि जब पहला ही दिन है तो शराब की छुट्टी। मस्जिद में आया गुसल करने के बाद, इसके बाद उसने नमाज पढ़ी, अल्लाह ने उसको दो सजदों के अंदर वो लज्जत अदा फरमाई। उसने सजदे में रो रो करके अल्लाह से कहा कि मेरे रब, पूरी जिंदगी गफलत से गुजार दी, मैंने मखलूक से मोहब्बत की, औरतों से मोहब्बत की, तुझ पैदा करने वाले से मैंने कभी मोहब्बत नहीं की, तेरे दर पे आया हूं मुझे कबूल कर ले मौला, कि मेरी वजह से ये लोग भी नमाज से काफिर हो गए, अगर मैं पढ़ता तो शायद बस्ती के अंदर कोई बेनमाजी न होता, मेरी नहुसत और गफलत की वजह से बस्ती बेनमाजी बन गई, मेरे रब मैं तौबा करता हूं। 25 साल जिंदा रहे, 25 साल तक उस चौधरी के तहज्जुद की नमाज नहीं गई। अल्लाह ने उस बस्ती से बड़े बड़े उलमाए रब्बानीयीन पैदा किए, ये हमारे बुजुर्गाने दीन थे। मौलाना मुजफ्फर हुसैन साहब बड़ा सादा आदमी था, बड़ा सादा आदमी, जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोला, कभी झूठ नहीं बोला। तो इनके दिलों के अंदर जब कभी देखते कि अजान दी गई है, जमात का वक्त हो रहा है, मस्जिद खाली है, वो डरते थे कि कहीं अल्लाह का अजाब ना आ जाए, बस्ती पर अल्लाह की पकड़ ना आ जाए, और कहीं अल्लाह तबारक व तआला गजब की वजह से इन लोगों को वीरान न करते। मस्जिद को वीरान करता है, लोग वीरान होते हैं, ऐसे मस्जिदें हम वीरान करते, गैर वीरान नहीं करते। पंजाब में आप देखो हजारों मस्जिदें हैं, आज भी भैंसें बांधी जाती हैं, मैंने अपनी आंख से देखा है, लुधियाना के अतराफ में, खुद लुधियाना सिटी के अंदर बाहर घास पड़ी हुई है, घास के पूरे रखे हुए हैं। अंग्रेजों ने तो घोड़े बांधे थे, अंग्रेजों ने अपने जमाने में घोड़े बांधे थे, हमने वीरान किया, फिर अल्लाह तबारक व तआला की गिरफ्त आती है, वैसे नहीं आती, फिर खाली हम दुआएं करें और खाली दुआएं और कुनूत नाजिला पढ़ लें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये हमारे बुजुर्गों ने हमारे नबी ने तालीम दी है, हम कर लेते हैं, बाकी बहुत कुछ करना होता है। हमारे नबी ने फरमाया, जब तक तुम मेरे लाए हुए दीन और मेरी लाई हुई जिंदगी के पाबंद नहीं बनोगे, अल्लाह तुमको तुम्हारे काम के हवाले कर देगा, और अल्लाह जिसको काम के हवाले कर दे तो फिर बीच से अल्लाह हट जाते हैं। अब बंदा और उसका काम है, बंदा और उसकी जिंदगी है, अब वो निपट ले, अल्लाह की ताईद नहीं होगी, अल्लाह की मदद नहीं आएगी, चीखते रहेंगे, चिल्लाते रहेंगे, फरिश्ते भी कहते हैं ये आवाज कभी आती नहीं, अचानक क्या हुआ, कभी भी ऐसी तो आवाज नहीं आई, तो फरिश्ते कहते हैं हाँ कुछ लोचा हुआ होगा इसलिए आया है, हम ऐसे हैं, हम गर्जी लोग हैं, जब देखा कि घबराहट आई तो सीधे डॉक्टर के पास, एडवांस हम समझते नहीं, एडवांस नहीं संभलते। अल्लाह के नबी ने फरमाया अल्लाह की मदद उस वक्त तक नहीं आ सकती जब तक कि तुम अपने आप को मेरे और अल्लाह के ताबे न कर दो। नासिरुद्दीन अल्तमश मशहूर बादशाह गुजरा है भारत के अंदर, तकरीबन सनीजरी 664 या 7वीं सदी के अंदर उसकी हुकूमत थी यहां। सुल्तान नासिरुद्दीन अल्तमश ये बादशाह लोग थे, लेकिन बादशाह होकर के बादशाह को कितना काम होता है, आज की तरह हजारों वजीर काम करने वाले नहीं होते। वो तो मुख्तसर एक टोला होता था, इसके साथ रह करके इतना बड़ा नज्म चलाते थे। नासिरुद्दीन अल्तमश उसका एक मुसाहिब था, उसके साथ रहने वाला, मेलजोल करने वाला, मोहब्बत करने वाला, उसका नाम ताजुद्दीन था, असली नाम था मोहम्मद। जब ये नासिरुद्दीन उसको मोहम्मद कहकर पुकारता तो वो इतना खुश हो जाता, इतना खुश हो जाता कि मुझे मोहम्मद कहकर के बादशाह सलामत पुकार दे। एक मरतबा वो कोई काम कर रहा था महल के अंदर और नासिरुद्दीन ने कहा ताजुद्दीन अभी काम पूरा नहीं हुआ, तो जो चीज झाड़ू उसके हाथ में थी फेंक दी। वो बादशाह को देखने लगा कि ताजुद्दीन मुझे कहां के दूसरे को, कहां दोस्तों कह रहा हूं ताजुद्दीन, ये तो भाग गया महल से, 3 दिन तक नहीं आया। बादशाह ने अपना खास आदमी भेजा के भाई जाओ क्यों बंद हो गए, वो पकड़ के लाया, कहां 3 दिन हो गए, कहां के हजरत आप मुझको मोहम्मद कहते थे और आपने अचानक मुझको ताजुद्दीन कहा, तो मुझे लगा कि तुम मुझसे बदसम हो गए हो, मुझसे नाराज हो, मुझसे कोई गलती हो गई, इसलिए तुम मुझको ताजुद्दीन कह रहे। काम का नहीं 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 बात ऐसी नहीं, दरअसल मैंने जब तक तुम्हारा नाम मोहम्मद रखा, मैंने मोहम्मद लिया, मैंने एक मरतबा भी तुमको बगैर गुस्सू के मोहम्मद नहीं कहा। उस मौके पर जिस वक्त तुम काम कर रहे थे मैं बगैर गुस्सू के महल के अंदर आ गया था और मेरा गुस्सू नहीं था, बस मैंने ये सोचा कि मेरे नबी का नाम अगर किसी के नाम के लिए पुकारूं तो मैं बगैर वजू के नहीं पुकार सकता, तो मैंने तुम्हें मोहम्मद नहीं कहा, मैंने तुम्हें ताजुद्दीन कह दिया। ये अजमतें थी, तो उनकी जिंदगी में दीन कैसा होगा जब नाम लेना गवारा नहीं करते थे। हमारे हबीब का नाम जो पराए आदमी का रखा हुआ है बगैर वजू के लेना गवारा नहीं करते थे, तो उनके अंदर की जिंदगी कैसी होगी, घरेलू जिंदगी कैसी होगी। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इनको हुक्मरानी का चांस दिया, जहां कहीं भी जमीन पर गए फतह हुई, जहां भी जिस मुल्क के अंदर गए अल्लाह ने दुश्मनों पर फतह अता फरमाई, सिर्फ अल्लाह के हबीब की जिंदगी के पावन होने की वजह से। बहरहाल बात चल रही थी कि हमारे नबी ने फरमाया सबसे पहला जन्नत का दरवाजा मैं खटखटाऊं। हजरत अली ने फरमाया कि या रसूल अल्लाह कुरान की एक आयत है यौमा नहशुरुल मुत्तकीन इला रहमान वफदा, इसका क्या मतलब है कि हम कयामत के दिन मुत्तकियों को मेहमान बना करके जमा करें, मेहमान बनाकर अल्लाह के मेहमान होंगे हम, इसका क्या मतलब। तो हमारे नबी ने कितनी बेहतरीन तफसीर फरमाई, कहा कि अली सुन मेहमान बनाकर कैसे पेश होंगे तुम, आपने फरमाया जब जन्नत की कब्रों से उठेंगे अल्लाह तबारक व तआला इनके लिए सफेद कलर की खूबसूरत ऊंटनियां भेजेंगे, चाहे मर्द हो चाहे औरतें हो, ऊंटनियों के पर होंगे, पर ऊंटनियों के पर होते हैं घोड़ों के पर, तो आपने फोटो के अंदर देखा होगा कि घोड़े का पर हो, लेकिन जन्नत के अंदर पर है, ऊंट के भी हैं, ऊंटनियों के भी और घोड़ों के भी। हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा जब उनकी रुख्सती हुई हमारे नबी के घर, तो इमाम बुखारी ने इस रिवायत को लिया है कि हजरत आयशा अपने साथ घोड़ियों को लेकर आई, खिलौनों को लेकर, कितनी कम उम्र होगी, उसमें एक घोड़ा था, घोड़े के 2 पर थे, वो घोड़ा हजरत आयशा ने पर्दे के पीछे छुपाया था। एक मर्तबा थोड़ी हवा चली, पर्दा उड़ा, आपकी नजर घोड़े पर पड़ी। हमारे नबी का आयशा ही क्या है, कहा घोड़ा है। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि आयशा क्या तू भी घोड़ा है, घोड़े के पर होते हैं कभी घोड़ा उड़ता है। तो हजरत आयशा जवाब हासिल, कहा आप तो कहते हैं कि सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम के उड़ते घोड़े थे, तो कैसे उड़ते होंगे, बगैर पर के तो थोड़े उड़ते होंगे, यानी परों का तसव्वुर करना सही है, इम्पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल है, और जन्नत में तो है ही। जन्नत में जब इतने बड़े बड़े महल हवा में उड़ते हैं, इतनी बड़ी जन्नत कैसे देखोगे, दुनिया से 10 गुनी बड़ी जन्नत मिले तो फिर वहां तो कोई ये कार तो है नहीं, रेलवे गाड़ी नहीं है, वहां हवाई जहाज नहीं है, ये तो सब शोर बकोर है, ये रमकड़े हैं अल्लाह के नजदीक, ये ट्रेन हो के जो भी हो, वहां सब अल्लाह तबारक व तआला ने बेहतरीन सवारी का सामान बनाया। जन्नत में महल के अंदर बैठा, वो सोचेगा कि मैं पूरी जन्नत को टहलू और घूम कर देखू, वो महल को हुक्म देगा, वो महल हवा में उड़ेगा, सब जगह उड़ता उड़ता पूरी जन्नत की सैर करवाता हुआ वो जहां चाहेगा उतर जाएगा। अब यहां दुनिया के अंदर तो पहाड़ आते हैं, बीच में जंगल आते हैं, दरिया हैं, गलियां हैं, खराबे हैं, सरकारी खराबे, फिर कांटेदार दरख्त हैं, सब है, बबूल के दरख्त हैं, ऊंच नीच है, फ्लैट तो एकदम है नहीं, सपाट जगह नहीं है, इसलिए कि हमारी धरती है बॉल की तरह है, गोल है, संतरा होता है संतरा, एकदम गोल नहीं है, बॉल की तरह, संतरे की तरह थोड़ी पिचकी हुई है ऊपर से, तो कहीं खड्डे टेकरे तो आएंगे, और जन्नत तो सीधी हमवार है, या तो 70% एरिया जमीन का तो पानी ने गिर लिया, 30% एरिया है जहां 7 अरब लोग रह रहे हैं, 700 करोड़ लोग रह रहे हैं, और वो 30 एरिया के अंदर जंगल है, पहाड़ है, खेतियां हैं, फिर बड़े बड़े झील हैं, नदियां हैं बड़ी बड़ी, वो 30% के अंदर है, 70% तो ऑलरेडी दरिया ने कब्जा कर रखा है, और वो दरिया कभी कब्जे को छोड़ने वाले नहीं है, कयामत तक कब्जा नहीं छोड़ेंगे। 30% में हमको इतना बड़ा लगता है कि कितनी बड़ी दुनिया है, तो वहां तो दुनिया से 7 गुनी बड़ी जन्नत है, और कहीं भी वेस्टेज जगह नहीं है, वहां खराबी नहीं है कि यहां जमीन के अंदर उगता नहीं। हदीस के अंदर आता है एक किसान अल्लाह को कह गया था खेती करो, और इससे कहेंगे क्या खेती, उधर थक के आया फिर यहां खेती करवा, तो अल्लाह फरमाएंगे क्यों तुझे यहां पे गेहूं चाहिए, कहेगा नहीं यहां सब कुछ तैयार है लेकिन मुझे टेस्ट करना है कि यहां खेती कैसी होती है। तो अल्लाह फरमाएंगे ठीक है टेस्ट कर ले, तो फरिश्ते बीज देंगे उसको कि ले बीज है बीज डाल, वो बीज डालेगा, जन्नत जवान है, पृथ्वी बुरी हो गई, कैसी बुरी, मरने के करीब है ऐसी बुरी हो गई, पर जन्नत की जमीन एकदम यंग है। अल्लाह के नबी ने फरमाया मिश्का शरीफ की रिवायत है, वो डालेगा बीज, अभी डालता हुआ आगे जाएगा और पीछे सब उग करके तैयार हो जाएगा, डालता डालता आगे जाएगा, उसको पता भी नहीं होगा मैं आगे जा रहा हूं, और पीछे सब गल्ला तैयार होकर कट जाएगा, कट करके गेहूं के दाने भी बाहर आ जाएंगे। तो वहां भी ऐसा मुतालबा करेंगे किसान लोग। तो हमारे नबी ने फरमाया कि जन्नत में, हजरत अली को फरमाया जन्नत में मेहमान इस तरह बनोगे कि कब्रें फटेगी तो अल्लाह ताला तुम्हारे लिए सफेद ऊंटनियां भेजेगा, तुम बैठ जाओगे, ये हवाओं में उड़ती हुई जाएगी जन्नत के दरवाजे पर, अपने अपने जन्नत में तुम चले जाओगे, जन्नत के दरवाजे पर पहुंचोगे वहां एक दरख्त है, उस दरख्त के नीचे से दो चश्मे निकलते, पानी जमीन से फूटे या पत्थर से फूटे उसको चश्मा कहते हैं, दो चश्मे होंगे, एक चश्मे का पानी पिएगा जैसे ही पेट में जन्नत का पानी जाएगा सब बीमारियां खत्म, एसिड गैस और ये सब खत्म, चूंकि यहां ये सब प्रॉब्लम हो रहे हैं, जैसे ही पिया सब बीमारियां फैली, फरिश्ते कहेंगे उधर ना ले, तो जैसे ही उसने बदन के ऊपर डाला तो एक खुजली खुजली सब खत्म, बाहर जिद की बीमारियां एकदम उसकी चमड़ी ऐसी हो जाएगी कि गोया कि वो नूर का चलता फिरता इंसान है ऐसा लगेगा। अल्लाह के नबी ने फरमाया फिर वो अपनी जन्नत का दरवाजा ऐसे खिटखिटाएगा। आपने फरमाया अली वो हल्का जो तुम खिटखिटाओगे उसकी सुरेली आवाज का क्या कहना, कि जैसे ही तुम उसकी जंजीर को खिटखिटाओगे इतनी सुरेली म्यूजिक बजेगी कि तुम्हारी हुरें उस म्यूजिक को सुनकर के झूम उठेगी, ऐसी झूम उठेगी कि वो फरिश्ते अंदर होंगे उनको कहेंगे जाओ जाओ दौड़ते हुए दरवाजा खोलो मेरा यार आ गया इंतजार करो, लेकिन उसके लिए कुछ करना पड़ेगा, अभी फौरन तो थोड़ी चले जाएंगे, थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो जैसे ही वो दरवाजे पर आएगा खादिम फरिश्ता उसका नूर ऐसा होगा, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अली अगर मेरा परवरदिगार अपना दीदार न करवाता तो जन्नती उसी को खुदा समझ करके उसके पैर में सजदा कर देता। जिस जन्नत के खादिम का यह हाल हो कि हमारा नबी कहता है कि उसके रूप रंग को देख करके उसे अल्लाह समझ लेता तो अल्लाह कैसा होगा, अल्लाह अपना दीदार कराएगा तो अल्लाह कैसे होंगे, अल्लाह अपना दीदार कराएंगे। वो फरिश्ता दरवाजा खोलेगा कहेंगे कि आपको बुला रहे हैं अंदर बोलो। सबसे पहला जो महल आएगा हमारे नबी ने फरमाया उसकी छत कितनी ऊंची है, 1,00,000 हाथ, 1,00,000 हाथ ऊंची है छत, 4,000 से ज्यादा बेहतरीन पिलर है, बीम, कुछ बीम गुलाबी कलर के, कुछ बीम हरा कलर जो पत्तों का कलर होता है और कुछ बीम पीले कलर के होंगे। इतने बीम होंगे अल्लाह के नबी ने फरमाया कोई भी बीम डबल नहीं होगा, एक जैसा भी होगा। तो कैसे कैसे डिजाइन होगी, कैसे अल्लाह ने डिजाइन की होगी, ऐसे महल के अंदर फरिश्ता लाके छोड़ेगा कि आपको अंदर जाना है। जब अंदर आने की फिक्र करेगा अल्लाह तबारक व तआला फरमाएंगे कि मेरे बंदे जाओ तुम मेहमान हो अंदर जाओ। जैसे ही वो अंदर आएगा तो एक नगमा सुनाएगी हो रहे बेहतरीन नगमा पड़ेगी कि तुमने हमें बहुत इंतजार करवाया, बहुत इंतजार करवाया कि तुम बड़े देर से आए, आए पर अच्छे आए, अब समझ लो कि हम कभी नाराज होने वाली नहीं है, हम हमेशा हमेशा राजी रहने वाली है, हम कभी भी गंदा रहने वाली नहीं, हमारे अंदर कोई गंदगी नहीं, हम हमेशा हमेशा पाक रहने वाली हैं। वो कहेगी कि हम हमेशा नाज और नखरों के अंदर पली हैं और हम नाज पर नखरों के अंदर रहेंगी, हम कभी भी बीमार नहीं होंगी, हम कभी गमगीन नहीं होंगी। अरबी अल्फाज हदीस के अंदर बेहतरीन नगमा सुनाएंगी। अल्लाह के हबीब ने फरमाया कि अली इस तरह तुम मेहमान बनाए जाओगे, यौम नहशुरुल मुत्तकीन इला रहमान वफदा, इसकी तफसीर अल्लाह के हबीब ने फरमाई कि इस तरीके से जन्नती लोग अल्लाह तबारक व तआला के दरबार में आएंगे, अल्लाह तबारक व तआला इस तरह इनको मेहमान बनाएगा। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको कमा हक्कहु हमारे नबी जो दीन लेकर आए इसकी पाबंदी करने की हमें तौफीक अता फरमाए, ये करेंगे अल्लाह हमारी दुनिया को भी संवार देगा, हमारी आखिरत को भी संवार देगा, दुनिया के अंदर भी इज्जतें अता करेगा, आखिरत के अंदर भी इज्जतें अता करेगा, दुनिया के अंदर जालिम बेड़ियों को हम पर मुसल्लत नहीं करेगा, अल्लाह तबारक व तआला किसी ना अहल के हवाले हमको नहीं करेगा, दुनिया के अंदर इससे बड़ा अजाब कोई नहीं है कि अल्लाह हमको किसी ना अहल के हवाले कर दे, इससे बड़ा कोई अजाब नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला तमाम की हिफाजत फरमाए। आपको मालूम है कि पोपटपुरा जो मस्जिद है बड़े इमाम साहब बेचारे बड़ी मेहनत करते हैं, मदरसा भी यहां से दूर जाते हैं नमाज पढ़ाने के लिए, कितनी दूर मस्जिद है, पाबंदी के साथ जाते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह आने जाने वाले अतराफ में जो नमाज पढ़ते हैं वो मुसाफिर, मस्जिद बड़ी होती है, अल्लाह तबारक व तआला ने अपने घरों को कैसी कैसी वीरान जगहों के अंदर आबाद रखा है। ये तो हम बड़े बदकिस्मत हैं कि अगर महले के अंदर मस्जिद हो और हम आबाद न कर सके, इससे बड़ी बदकिस्मती कोई नहीं है। खैर, दिन में तो ये होता है कि बेचारे लोग कामकाज के लिए चले जाते हैं, लेकिन फजर का जो वक्त होता है उसमें तो कोई कामकाज के लिए नहीं जाता। तो असल जो नमाजी जो पर्सन निकाल रहे होते हैं, पर्सन किस महल में कितने नमाजी हैं, वो फजर में निकल जाए। इसलिए यहूदी रोज डरते हैं कि इनकी मस्जिदें भर न जाए फजर, इसलिए कि जिस दिन इनकी मस्जिदें फजर में भर गई तो दुनिया से यहूदी मिट जाएंगे। हमारे नबी के हदीस पर इनको इतना यकीन है। तो आपसे जितना भी हो सके, कोई साल का 1.5 लाख इतना खर्चा है पूरे साल का, जितना भी हो सके दान करे, अल्लाह तबारक व तआला आपके देने को कबूल कर।
رب لك الحمد حمدا دائما دواما ويا رب لك الحمد حمدا خالدا معبودا اللهم هؤلاء عبادك أتوا على بابك فلا تردهم عن جنابك فإن تردهم فإنه لا حول لهم ولا قوة إلا بك يا ذا الجلال والإكرام اللهم أعطهم سبلهم اللهم أعطهم سبلهم اللهم آتهم سبلهم وأكرمهم ولا تهنهم اللهم أعطهم ولا تحرمهم يا ذا الجلال والإكرام اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل يا ذا الجلال والإكرام وصلى الله تعالى على خير خلقه ونور عرشه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين